سننے کے لیے بابستی کے ساتھ سننے کے لیے بیٹھے. جو کچھ بابا سکتا تھی سب کو دیا. ان کو کیا ارینجمنٹ کرنا تھا؟ کمرے کی ضرورت تھی, مائک کی ضرورت تھی, سولر ہارمونیم کی ضرورت تھی, الیکٹرسٹی کی ضرورت تھی. وہاں جو جو لوگ آئے ان کو پانی کی ضرورت تھی, کسی کی ضرورت تھی, بس ایک ہری کتھا تھی. یہ بھی گڑبڑ کرتا دھیان کو بات دیتا ہے. دعا میں بیٹھے ہیں تو مائی کی ضرورت ہے. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ بچہ آ کر کے دیکھے ان کا ڈائیورس نہیں تھا. نہیں بچوں کتنے کا جو بھاؤ ہے نہیں آئے گا صحیح. ان کے شبدوں کا جو تاثریہ ہے بھاؤ ہے ہرمن گم نہیں ہوگا سب کا ٹھیک ہے گھر میں ادھر. یہ تو کیا کچھ ہے؟ اس لیے یہ کتنے ٹھیک نہیں ہے. اس سب میں کوئی اتاری نہ ہو سب کے ابھی کوئی اسے ٹھیک کر رہے ہیں کیا ہے کوئی اس کو ٹھیک کر رہا ہے کوئی گھر میں آ رہا ہے کوئی یہاں سے یہاں رکھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی گھر کم نہیں ہو چکے گا. اور جگہ منورنجن ہوتا ہم لوگ منورنجن ہم لوگ کا نہیں. آج ان کا جنم کسی میں نے کسی کے سامنے میں بتلاؤں گی یہ کیسے منتا ہے. یہ جنم کیسے کسی منو گے؟ یہ ایک سنسکار ہے. ہم اس کے بعد میں پیچھے بول اب اس کی فکر اکاگر کی کوئی چیز کی اب جو ویسے جو ہے بہت سکل وہ بیٹا بھی بیٹھ جائے ایسے اب تم کو اس میں نہیں دیں ہم اپنے پاس سے لیتا ہوں ہم میں جو ویسے میں پکالے سے لگا کر کے سب کچھ دھیان کریں. ابھی تو سن بند کر کہیں لگا 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 آپ یہ ہمارا سمے ہے اور دنیا کا ہے ہم کیا لگ رہا کیا لیتا ہے کام کیا چیز لیتا ہے کیا آپ اس کو دیکھے گی نا کام نہیں لے گا کام نہیں لے گا وہ گندا ہو گیا. ارے سنو مجھے میں بولتا ہوں بولیے ایسا کام اس لیے لیتا ہے آپ دیکھیے وہ گندی چیز ہم نہیں لیں ناک سگند لے کے اس کی ہم کو دے گئے وہ چیز میں نہیں دی. ہاتھ جس کو گرہن کرتا تھا جو وہ کام کر دیا میں وہیں نہیں دوں ایک مات شبد ہے اس کو بھول دیتا اور سب جب کے ماتم سے ہی سلام جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اسے نہیں لیں گے وہ سبھی نان بن چیزیں مست ہے. اور کان جو لیتا ہے کہ سب گرم میں یہ پکا پکا اس لیے کام کو ہم لوگ لے کر کے کام کے اس کے سن سنیں گے اسی کے بھاؤ کا آپ کا کام گھر کی باتیں بھی لیتا ہے سب گھر کی بات لے کرتے ہیں اب تو سب برہم بھٹا جی سے میں اسے ٹھیک کر لوں گا اور ٹھیک کر کے کام کے ماتھم سے یہ سب کچھ چیز نہیں. اس لیے وہ کام کو لیتا ہے کام کو جو چیز کو لیتا ہے آنکھ میں دیکھ سکتے مٹ میں اسے چیک کر ناک اسے کیوں نہیں مل سکتی اس لیے ضروری اس لیے اس کو کہتے ہیں سیٹی دکھا سیٹی کس کو کہتے ہیں کیا چیز کس چیز کو بھگوان کیا ہیں کیسے ہیں یہ سیٹی دیکھنے سے نہیں ملیں گے پہلے کے لوگ کفا بغیر اس طرح سے نہیں پڑھتے دے دیا کیا چل کر شکا بہت بہت مہنگی ہوتی ہے اور یہ گندی شکا پہلے بھگوت تک کو کانوں کے مادھیم سے ہوتی ہے ağlayarak kutu okumak da böyle bir şey yaptı ki sesleri yaptı. Kutu okusu kapan kapan. Kalıya çarşma kutu böyle bir şartlara bağlık mı? Gita mı? Kutu. Kutu okusunu çıkartıyor, günü gitu okusunu çıkartıyor. Kutu okusunu daha mı çıkartıyor? Aptı. Aptı kay. चोपड़ा जी का आज जन्म दिवस है। आज सभी लोग आप लोग जो बड़े हैं उनको आशीर्वाद देंगे और उनको ये आशीर्वाद देंगे कि राधा कृष्ण के चरणों में एकांतिक प्रीति हो। आजकल कुछ कुरीतियां फैल गई हैं समाज में, पेट आदि काटने की जन्म की तिथियों। हम लोग आज कीर्तन के माध्यम से उनका यह जन्म तिथि मना रहे हैं। राधा कृष्ण की आरती काल में अपने जीवन अपने जन्मदिन में हरि गुरु वैष्णवों का सम्मान करेंगे और सभी लोग उनके आशीर्वाद। प्रदीप में जैसे ज्योति होती है ऐसे जीवन में ज्योति होती है। संस्कार का बहुत बड़ा फल होता है, बहुत बड़ा भारी फल होता है संस्कारों का। क्या चाहिए नहीं हो रही है लक्ष्य कर संस्कार का बहुत लाभ होता है। संस्कार हमारे भारतवर्ष में जन्म से पहले जो गर्भधारण होता था गर्भधारण का संस्कार होता था, फिर जन्म का संस्कार होता था, मुंडन का संस्कार होता था, उसको अन्न दिए जाने पर अन्न प्राशन का संस्कार होता था, काला अन्न जो ठाकुर जी का भोग लगा करके खीर इत्यादि दी जाती। इसके बाद में उपनयन का संस्कार होता था, विवाह का संस्कार होता था, इसके बाद मरने के बाद में साध्वी इत्यादि संस्कार होते थे। इसके बीच में किसी ने संन्यास ले लिया तो संन्यास का संस्कार होता था। इसका कितना फल है मैं एक इतिहास के द्वारा भागवत के द्वारा मैं बतलाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग भी आएंगे तो भगवत पूजन से भगवान नाम कीर्तन के माध्यम से ठाकुर जी की प्रदेश के आरती से अपने बच्चे का संस्कार करेंगे। एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण को वो अच्छे संस्कार थे। वो किशोर अवस्था में पढ़ने लिखने के बाद में एक योग्य लड़की से इसने शादी की। कुछ दिनों के बाद में इसके कुछ সেদিনে কিন্তু উসে বাদ মে ও আপনি মাতা পিতা কি সেবা ভি করতা থা সতপথ পর চলতা থা পত্নী কে প্রতি আদর কা ভাব থা পত্নী ভি বৈসে হি থি কিছু দিনে কে বাদ মে ও কহিন বাজার মে গিয়া আর এক কিশোরী কে ফন্দে মে পড় গিয়া যে বেচ জাতি বহুত সুন্দর সবসে জাতি থি সুন্দরী ভি থি লোকে আকর্ষণ কর লিয়া থা তো উসকো ভি আপনে রূপ সে আর আপনে সুন্দর আওয়াজ কে সঙ্গীত সে উসকো আপনে তরফ মে আকর্ষিত কর লিয়া ইধর মে দেখিয়ে আকর্ষিত কর লিয়া আর ও ঘর কে অতি অচ্ছে অচ্ছে চিজো কে চুরা কর আর উসে দেখে ধীরে ধীরে যে কিছু সবসে স্ত্রী কে গহনে আভূষণ ইত্যাদি সে ঘর মে কুছ সম্পত্তি থি উসকো ঐসে দিয়ে जब कुछ उसके पास में नहीं रहा देने का एक दिन इस व्यक्ति ने उसको विचार करके घर से बाहर करने की कोशिश अपमान ऐसा उसको हुआ हृदय निश्चित जैसे है वो प्राण त्याग करने के लिए वो चल पड़ा प्राण इसलिए वो घर छोड़ करके इधर निकले नहीं तो जाकर फिर कर सकते वो उसके घर से निकल करके चलता कुछ खाया नहीं एक जंगल मिला इतने में शाम हो गई धीरे धीरे रात होने लग गई सिंह इत्यादि गर्जन करने लगे जंगल में हाथी की हार मारने लगे डर के मारे प्राण छोड़ने के लिए आते हैं अब प्राण को बचाने के लिए कहाँ जाएं कहते हुए एक छिपे छिपे मंदिर में उसने शरण ली रात भर नींद नहीं आई रोता बिलखता रहा और जो बेचा थी उसने देखा कि उसका मैंने उसका दस्त हरण कर दिया और घर से आग निकाल दिया वो पीछे पीछे उसको मनाने के लिए चलते वो भी वहाँ पर आई और ऐसे ही शाम हो गई वो भी एक कोई रन बसेरा छुट्टी हुई और उसी मंदिर के एक कोने में वो भी चली गई परस्पर ने परस्पर को देखा आज उसके गिर में किसी भी कुछ नहीं था उपवास है और रोती है जब सवेरा हुआ प्रकाश हुआ किसी ने देखा ये तो यहीं पर बैठा उसने देखा कि ये तो यही है अब ये उसकी दौड़ करके देखता उसके चलने में गिर पड़ी उसके आंखों से आंसू निकल गए उसने भी उसको पकड़ कर बात ये थी उस दिन जो दिन झगड़ा हुआ उस दिन उसने चतुर्दशी का दिन था उस दिन उसका उपवास झगड़े के कारण हो गया और आप घर जागरण हो गया और वो टूटा फूटा मंदिर था वो नृसिंह भगवान का मंदिर बाई शांति ये सब हुआ नहीं इच्छा करने इसका यह फल हुआ कि वही दूसरे जन्म में प्रहलाद महाराज हुए और वो जो बेटा थी प्रहलाद महाराज जी की रानी थी बचपन से ही कैसे रहे सबको ज्ञान उनके अंदर में भरा पड़ा था सुखदेव गोस्वामी जी माता के गर्भ में 12 वर्ष या 16 वर्ष थे और व्यास जी से उन्होंने सारी चीजों को वेद वेद उपनिषद भागवत इत्यादि का श्रवण किया और वो कैसे हुए और प्रहलाद महाराज जी 7000 वर्ष अपनी मैया के गर्भ में थे और नारद ऋषि उनको ये सब तब तक ही बातें सुनाते थे भागवत में लिखा जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया तो इन्होंने उसके राज्य पर आक्रमण किया और सब लोगों को अपने को मार पास करके उसकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी पराधी को पकड़ लिया उस समय वो गर्भवती थी उसने सोचा इंद्र ने उसके बच्चे को हमको मारना है इससे उसे कोई भी हमको देख लें क्योंकि बच्चा तो उसी का है वो जैसे धुरंधर और तेजस्वी और वीर है ऐसा ही ये भी होगा और जगत में उस पाप में चाहेगा, इसलिए गर्भ से निकलते हैं उसे नहीं मार जाते, इसलिए उसको पकड़ कर फूल करके चल पड़े विमान से। इस समय नारद ऋषि ऊपर से कई बैठे थे आ रहे थे, उन्होंने कहा अरे इस सुशील जाति को जो विलाप कर रही है तुम क्यों पकड़ करके ले जा रहे हो, इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का गर्भ है और ये महाउत्पाती भयंकर दस्यु दानव होगा राक्षस होगा, इसलिए जो निकलते हैं उसके पास तुम उसे मार नहीं सकते। मैं देख रहा हूँ दिव्य दृष्टि से ये परम भागवत होगा, इसे से छोड़ दो, नहीं मार सकते। तो नारद जी के कहने से उसने छोड़ दिया, नारद जी ने पकड़ लिया, छुट्टी कर लिया अपने आसन के पास ही, मैं उसके लिए किसी पानी की चीज दे दिया, ऐसा जो रहो वहीं पर रहने लगी। और नारद ऋषि के घर पर वहाँ किसी ने झाड़ी दे दी, लकड़ी बिल करके दे दी, इस तरह से सेवा करने लगी और उनके नीचे हरी कथा सुनने लगी। नारद ऋषि उसको सुनाने के बहाने, नारद ऋषि के बहाने उसको सुना रहे थे, उनको सुनता कौन है भीतर में, ये है गर्भ संस्कार। यदि माँ को पुत्र का पेट में है या लड़का है या लड़की है, इतने में भागवत की कथाएं सुने, तत्व ज्ञान की बातें, भगवान की बातें सुने, कीर्तन करे, कीर्तन सुने, तो बच्चा जरूर वैसा ही होगा। धर्मात्मा का पुत्र थे वो धर्मात्मा, ये संस्कार होते हैं। इसलिए नारद जी जैसा ही प्रभाव में ये बचपन से इसके समस्त तत्व ज्ञान थे। जब ये पैदा हुआ तो वो सेवा करते 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 नारद जी ने कहा कि तुम किसी बार मांग लो, तुमने बहुत मेरी सेवा की। उसने कहा जब ही मैं चाहूँ तभी हमारा पेट से बच्चा निकले, ऐसे नहीं निकले, हमारा स्वामी आ जाए तो पेट से बच्चा निकले। ठीक इसे 7,000 तपस्या की और इसके बाद में ब्रह्मा जी दौड़ करके आए, बोले कि क्या वर चाहता है, अगर मैं अमर बन जाऊं तो ये अमर छोड़ करके अब दूसरा कोई भी वर मांग लो। इसने वर मांगा अमर ही जैसा, मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, पाताल में नहीं मरूं, किसी महीने के अंदर में नहीं जन्म लूँ, मरूँ, मैं ऊपर और नीचे नहीं मरूँ, ब्रह्मा आपकी बनाई हुई सृष्टि में से मनुष्य या कोई पशु जानवर सांप या देवता गंधर्व बाघ भालू इत्यादि हमको नहीं मारते, मैंने किसी न किसी प्रकार से उसने मान लिया कि हमको कोई नहीं मार सके। मैं दिन में नहीं मरूँ, रात में नहीं मरूँ, आकाश में नहीं मरूँ, इधर में नहीं मरूँ, मैं असंख्या नहीं मरूँ, सत्य से नहीं मरूँ। जब मान करके आया तो एकदम जगत में उत्पात करने लग गया। उसी समय उसका यह बेटा हुआ और उसका नाम उसने प्रहलाद रखा। 5 वर्ष स्कूल में दे दिया, उस समय में शुक्राचार्य नहीं थे, उसका पुत्र था संदामर। संद माने होता है सांस, बेपरवाह चलता है, रास्ते से नहीं चलेगा, किसी की परवाह नहीं करता। यदि सामने कोई आ गया तो महाक्रोधी भी होता है, कामी भी होता है, लोभी भी होता है। तो जो लोग भगवान का भजन नहीं करते वो ऐसे ही भगवान का तत्व ज्ञान नहीं। और एक अमर्थ है, अर्थ माने अंधकार है, प्रकाश है, अंधकार और अमर्क माने होता है जहाँ पर प्रकाश है, मर्क माने होता है प्रकाश, अमर्क माने ज्ञान बकार है, अंधकार ज्ञान नहीं है जी। उनके स्कूल में पढ़ने लग गया, शाम दाम दंड भेद इत्यादि सब पढ़ाने लग गया। 5 वर्ष की उम्र में अपने बेटे को उन्होंने बुलाया, पूछा अच्छे बतला तो बेटा तुमने गुरु जी के यहाँ क्या सबसे अच्छी समझा, क्या विद्या तुमने सीखा, तुमको कौन सी चीज अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा तो सब में मन में अचुर्य वर्य दे ही नाम, हे अचुर वर्य अचुर में श्रेष्ठ, संसार में सबसे बड़ी विद्या यही है, मैंने इसी को अच्छा समझा। असूर्यवज्ज देहिनाम शुकात्मपातम गृहमंदकूपम यदम गतम हरिमास्त। इस संसार को अंधकार समझो, शुकात्मपातम ये आत्मा का, इसमें यदि भोग में लिप्त हो जाएंगे तो आत्मा का विनाश हो जाता है, आत्मा का पतन हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को सत्संगत में जाकर के भगवान का भजन करना ही ये सबसे बड़ी बात है। हमने तो इसी को सीखा। इसी प्रकार से सत्संग में रह करके एकांतिक रूप से भगवान का पतन करें। कौन भगवान है आगे बतला दिए, कृष्ण ही कौन भगवान है। अब इसे श्लोक में बताया गया है, गृहमंदकूपम गमन गतम जब हरिनाश हो। अंधकूप की उपमा दी संसार से। एक व्यक्ति था, वो कहीं जा रहा था, बीच में जंगल आया, बड़े बड़े लंबे चौड़े थे, बाघ भालू उसमें रहते थे। जब आगे गया तो देखा सामने से सिंह आ रहा है और गर्दन करके उसके ऊपर में कूद पड़ा। ये भी भागने की चेष्टा की, फिर लंबे लंबे मोटे मोटे चढ़ नहीं सका और एक सेकंड की देरी होने से उसको बाघ पकड़ करके खा जाएगा। इतने में एक सिंह आदि पड़ा और उसकी ये पानी नहीं, उसमें खंडहर हो चुका था, उसमें सांप बड़े बड़े रहते थे, बिच्छू रहते थे, उसके ऊपर में कुछ पीपल के पेड़ कुछ हो गए, इसलिए उसको अंधकूप कहते हैं। दूर से मालूम नहीं पड़ता, बस एक पीपल की दो डालें थी, उसको पकड़ करके उसी के अंदर में छूट गया। जब कुदरी की तैयारी कर रहा था नीचे, इसने देखा कि सांप काले काले क्षण उठाए हुए उसको बचने के लिए तैयार, प्राण सन्न हो गया, नीचे नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, अब दोनों डालों को ऐसे पकड़ गए दोनों हाथ में। इतने में कहाँ से एक सफेद चीहा एक काला चीहा, जिस डाल को पकड़े हुए है इन दोनों डालों को पकड़ने लग गया। अब जो एक सेकंड की बात है, यदि पकड़ता भी है तभी मरता है, वो गिरे जाएगा, वो काट देगा, और यदि ऊपर जाता है तभी मरेगा बाघ, अभी सिंह अभी गर्जन कर रहा है, और नीचे जाता है तो सांप उसे काटेंगे देगी मरेगा। चारों तरफ में भयभीत होकर के ऊपर में देखा, एक छोटी सी पकड़ी कहीं में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, अब उसमें नदी लगी हुई है और उसे सुंदर सुंदर नदी की लाल लाल बूंदे कटा, उसने मुख को बढ़ाया, मर कर रहा हूँ, स्वास्थ्य तुलो तुले जी बढ़ाया और एक दिन देखिए हाँ क्या मधु। इधर तो वो चूहे दोनों काम कर रहे हैं, सांप भी तैयार हैं, बाघ भी तैयार है मारने के लिए। अब किसने में सोचे जैसे इसमें क्या होगा, यदि पकड़ कर आता तभी मिट्टी नीचे जाएगा, ऊपर में जाने से मिट्टी, चारों तरफ में मिट्टी ही मिट्टी है, क्योंकि ये जो एक बिंद जो मिला क्या मधुर है, यही अंधकूप है। हम लोग की दशा ऐसी ही है, ये मधु का बिंद क्या है, ये संसार का सूप। दो दिन के लिए दो बिंद में दो दिन का कोई ठीक नहीं, ये कब ये समाप्त हो जाएगा, यदि कहीं पानी हिल गई तो क्या होगा, मधुमक्खियां होकर के एक साथ में मुख पर ही आक्रमण करती, लाखों मधुमक्खियां जाएंगी, वो उसे भी मर, आँख हम भी कर देगा, क्योंकि ये बीच से वो मर जाएगा लाखों एक साथ में। बस भगवान के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है, इसलिए ये कहते हैं शिक्षा गृहम अंधकूपम, ऐसे अंधकूप को प्रत्याग करके आसक्ति शून्य होकर के या प्रत्याग करके भगवान का एकमात्र भजन करो, क्योंकि ही अपनी गोदी से उसे फेंक दिया। क्यों सिखलाया है सीधा, बच्चा कहाँ से सीखा, गुरु जी ने नहीं तो सिखलाए हैं, मैंने नहीं चला तो कहाँ से सीखा, अब इसे हमको हम मारेंगे। अरे हजूर मैंने नहीं सीखा, ये अपने स्वाभाविक रूप से ऐसा कहता है। गुरु जी बड़ी मुश्किल से से बच्चे को लेकर के फिर स्कूल और बोले शिक्षक बता मैं तुम्हारा गुरु किसने सिखाया। उन्होंने कहा सिर्फ मथुर नथुर के परसों उत्सव होगा। कृष्ण भगवान ने भगवान कृष्ण में मथुर जो होती है ऐसे नहीं होती, लाखों चेष्टा करके मनुष्य के आदमी नहीं करते हैं संसार के। ये तो बड़े सौभाग्य से यदि भगवान की कृपा हो और ऐसे संत की कृपा हो तब तो कृष्ण में मति लगती है। साधारण रूप में और फिर तो ये नशा है ना और बीच है, अफीम जरा खा करके किसी दिन देखा जाए शिक्षित हो जाए। अरे और की तो बात करो, तंबाकू लोग खाते हैं यहाँ रख लेते हैं ना क्या करते हैं, सुपारी खाते हैं किसी को नहीं छोड़ता। मैंने कभी किसी से कहा कि भाई वो हरि नाम करने के लिए कह रहे हैं, मैंने कहा कि सबसे पहले प्याज लहसुन छोड़, ये तो छूटना पड़ा फिर मुश्किल ये नहीं। एक आदमी को मौत थी सूबेदार से मिलते में बहुत और लंबे चौड़े थे, पहाड़ी थे लंबे और उनकी गोट ऐसी थी बनाए रखे। भगवान का भजन करेंगे तो ये पहले में केस को और इसको हटा करके तब दीक्षा ली जाती है, छोटी नहीं छोड़ता, ये तो प्राणी से भी अधिक किया। मैंने जो तराजू पर अपनी मौत और भगवान को रखी है कौन भारी है बात लाइए तो अरे ये बात भगवान ही बने कठिन साथ ही साथ उन्होंने सरकार सदान चीजें नहीं छूट पाती हैं। भगवान जी को देखेंगे कि हमको चाहता है तो हमारे लिए कुछ छोड़ सकता है, ये बुरी चीजें ये सदगंधी चीजें हैं क्या लच मथिन बिड़ी सिगरेट ये सब चीजें क्यों नहीं छोड़ सकते हैं भगवान को। एक सेकंड में छूट जाएगा, यहाँ तक कि देवता देवियों का भी भजन जो संसारी चीजें करके इस चीजों को प्लेस में देते हैं उनका भी बच सकते। ऐसे लाखों जा रहे हैं इसलिए एकांत चित्त से यदि भजन करने की लालसा है और अपने जीवन को सार्थक बनाए तो प्रभाव महाराज या उपदेश ये धारण करना चाहिए। वो गुरु गुरु नहीं उसमें कहते हैं जो अपना ही भजन नहीं करते वो दूसरों को क्या सिखलाएंगे, इसलिए अपने भी नहीं होगा वैसे कुछ जो लौकिक गुरु हैं उनके कहने से भी नहीं होगा, कैसे होगा। कहते हैं भगवान की कृपा यदि हो और उनकी कृपा से किसी स्तर से संत मिल गए उनके चरणों की भूमि से अभिषिक्त होने के बाद में तो ये चीज हो सकती है अन्यथा नहीं हो सकती है। तो सरल चीज किंतु बड़ी कठिन चीज है, एक कांतिकता है ना कृष्ण भवन में ये बड़ा भारी कठिन है। ये उनके दिल से होगा। एक साधारण कथा कह दीजिए, एक बच्चा बहुत गुड़ खाता था, उसके पिता ने बहुत बार कहा माना। एक दिन अपने गुरु के पास में गया बच्चे को गोदी में लेकर, महाराज आप इसे एक बार कभी ये गुड़ मत खाओ, इसको बहुत रोग होता है खुजली इत्यादि होती है घाव हो जाता है आप इसे कह दीजिए। मैंने कल लाया तो चला गया, दूसरे दिन लाया मैंने कहा बेटा गुड़ मत खाया, सचिन के लड़के ने गुड़ खाना छोड़ दिया। पिता ने कहा सही आपने क्यों नहीं कहा आज कह रहे हैं, तो कल इसलिए कि कल तक मैं गुड़ खाता था इसलिए मैंने नहीं कहा है, तो फिर हम जो कहते नहीं पालन करता तो जो खुद ही नहीं भजन करता है दूसरों से क्या कराएगा। इसलिए पहले सचरित्र होकर के इन सब बुरी आदतों से दूर करके जो करता है वही दूसरों को करा सकता है, दूसरे नहीं करता अपने मन से भी नहीं छोड़ सकते। इसे वैष्णव के चरणों में अभिषेक के लिए बिना बिना पिता के भजन में लगना और भजन करना बड़ा भारी कठिन, और जब तक ऐसा नहीं होगा ये दुखमय संसार से हम कभी भी पार नहीं हो सकते हैं, यह एकदम सही सत्य है। प्रहलाद महाराज ने इच्छा दी एक दिन इसका गुरु कहीं बाहर चला, बच्चों ने बैठ गए, बच्चों ने कहा जब चलो हम खेलने चले। प्रहलाद महाराज जी ने कहा आज तो खेलेंगे नहीं, आज बेटा बातें करेंगे, हर चर्चा हर चर्चा क्या अच्छा सुनो हर चर्चा देखो बचपन से ही भगवान का बचपन से ही भगवान का भजन करना क्या क्यों उन्होंने जो बुद्धिमान है बचपन से ही छोटी उम्र से ही भगवान का भजन क्यों कहें पहले संसार भोग लें पहले पढ़ लिख लें किसी एक किसी में एक्सपर्ट हों काफी संपत्ति होगी सब भोग कर लेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे बूढ़ी होने पर कथन जो बीच में मृत्यु हो गई तो क्या करेगा कोई गारंटी है जब कितने दिन रहेगा नहीं रहेगा तब मृत्यु हो जाएगी किसी की कोई गारंटी तो एक व्यक्ति की गारंटी थी 7 दिन की किसकी और किसी की गारंटी नहीं है भाई 7 दिन की गारंटी हम लोग का कोई ठीक नहीं है कब जीवित रहेंगे कब मर जाएंगे इसलिए आज ही से कल करो तो आज कर आज करो तो अब कल में कर रहे हो ये भी बहुत ही करो आज ही करना है एक सेकंड भी उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है ये सब कुछ अपनी देवता के ऊपर में निर्भर है इसलिए कह रहे हैं कौन बात क्यों बुद्धि अभी निर्मल करें जैसे बच्चों को सिखलाया जाता है सीख लिया 7 वर्ष के बाद में किसी को उपदेश देकर के उसका मत कोई बदल नहीं सकता एक उसने पक्की अपनी धारणा परिचरित हो जाती है इसलिए इसका संस्कार नहीं बदल सकते इसलिए बचपन में बच्चों को जो शिक्षा देंगे वही सब ग्रहण करते उसने कहा नहीं भाई अभी हम भजन नहीं करेंगे कुछ दिन संसार में रह लें देख लें सुन लें तब करेंगे बूढ़े होने पर करेंगे तो बूढ़े होने में तो तुम्हारी यदि बच भी जाएगा तो कमर ही नहीं सीधी होगी तो फिर क्या भजन करेंगे तो फिर भजन करेंगे तो खाएंगे कहाँ से पहले से हम कमा करके तो रख लें एक ऐसी स्थिति कर लें जिससे कि हम लोग भजन कर सकें इसके लिए करते हैं देखो कोई संसार में दुख नहीं चाहता कोई भी नहीं चाहता क्योंकि दुख क्यों आता है क्यों आता है इसलिए यदि सुख भी होगा तो अपने आप आएगा लाभ कैसा करेगा सुख नहीं होगा और यदि सुख लिखा है तो सुख आ जाएगा इसलिए कुछ नए कर्म करो भाग्य के ऊपर में भी सीखना नहीं है भाग्य माने क्या चीज पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म का फल इस जन्म में तुम नहीं करेगा वैसा ही पहले जैसा करेगा तो तब वैसा ही दिखाएगा फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ेगा इसलिए बुद्धिमान पुरुष भविष्य की चिंता नहीं करते कि भविष्य में क्या होगा बल्कि ये चिंता करते हैं हम कैसे भव सागर से निकल करके हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय और मधुर हो ये कैसे होगा इसीलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है सुख के लिए चेष्टा नहीं सभी करते यहाँ तक कि राक्षसों इत्यादि में भी सुख के लिए चेष्टा करते हैं किंतु होता है उल्टा दुख ही दुख मिलता है विवाह करते हैं सुख के लिए और 2 दिन के बाद में लड़की अपने पति के घर से चली आई नहीं रख सके क्या हुआ बच्चे पैदा हुए और यदि दुख से निकले तो ऐसा भी होता है इलेक्ट्री के लिए हम करते हैं किंतु होता है दुख इसलिए तत्प्रयास न तत्त आयु दया परम तथा न दिन कटे इच्छे मन निपुंग चरण इधर भगवान के चरणों के अतिरिक्त कुछ कहीं इधर भगवान के चरणों का तुम भजन करो इन पर आश्रय करो तुमने पहले नहीं भजन किया इसलिए तुम्हारा जन्म मरण हो रहा है तुम समझो कि यह हार मांस का पुतला मैं नहीं हूँ मैं भगवान का नित्य दास हूँ उन्हीं का अंश हूँ इसमें आए हैं बिना भगवत भजन से मिले भगवान से मिले हमको सुख और शांति मिले रुपये से ही मिलती था, सबसे बड़ा संसार में धनी रावण था। उसकी प्राची, उसके महल सब गांव जितने लंका में थे वो सब सोने के थे, जवाहरात के थे। कहाँ की सर, उसके वंश में प्रदीप देने के लिए कोई नाती तक और पोते तक नहीं रहे, सब 1 लाख पुत्र सवा लाख नाती, कोई वंश में नहीं रहा दिया और बाती देने के। इसके द्वारा सुख नहीं, सुख होगा हम भगवान के अंश हैं, पाठ हम पाते हैं। यदि हम लोगों ने इनका भजन किया बचपन से तो हमको सुख हो सकता है, शांति इस जन्म में भी हो जाए। इसीलिए कृष्ण कभी कभी संतों को भेजते हैं जगत में अपनी शक्ति को, और कभी कभी खूब नीच जगत में आते हैं जैसे नारद इत्यादि को भेजते हैं, संतों को भेजते हैं, और कभी कभी राम या कृष्ण नृसिंह इत्यादि रूप में जगत में राम और कृष्ण रूप में लीलाएं करते हैं और अपने पीछे लीलाओं को छोड़ देते हैं। उन लीलाओं को उनके नाम से एक बार भी यदि स्मरण करें तो चित्त से तो संसार के सारे दुख में भी जाते हैं। आप लोगों ने सबरी का नाम सुना था, एक दिन ही स्कूल में जन्मी थी, किंतु उनके गुरु थे माँ संगरी थी। जब वो उनके यहाँ भजन होता था, कीर्तन होता, हरि कथा होती राम की, बड़े बड़े साधु संत लोग आते थे, ये भी बहुत दूर से बैठ करके सुनती बहुत दूर से। एक दिन वहाँ के ऋषियों ने कहा ये नीच जाति की शिद्रा यहाँ आती है पास में, हम लोग यहाँ नहीं आएंगे और आपसे संबंध नहीं रखते हैं। माता जी ने कहा जिस तुम लोग भले नहीं आए, और उसको बुला करके कहा जो एकदम हमारे निकट बैठे, यही सबसे जो गया यही ब्राह्मण है, यदि भगवत भजन का गुण नहीं है तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, और शूद्र में यदि भगवत भजन करने की लालसा है तो वो शूद्र नहीं वही ब्राह्मण है। गुण से आदमी ब्राह्मण होता है, ब्रह्म को जो जाना नहीं तो वो ब्राह्मण कैसे रहा, केवल चित्र से ब्राह्मण नहीं है भगवत भजन से, इसलिए तुम ही सबसे योग्य हो। इस तरह से ये हमारे ऋषियों का भी विचार ऐसा, इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करने की चेष्टा करनी चाहिए। हम लोग सब विषय में ऐसा है, गिरिकरण में भी ऐसा है, दुखों को दूर करने में भी ऐसा है, एक साधारण क्रोध भी दूर नहीं कर पाते हैं। इसलिए पहले भगवान का स्वागत हो करके, पहले भगवान कहाँ मिलेंगे, पहले गुरु को शरणागत हो, गुरु के निर्देश से उस तत्व को जानो कि मैं ये शरीर में इसके अंदर में आत्मा हूँ, और जब तक आत्मा का भगवान से संबंध नहीं होगा हम किसी नहीं हो सकते। कलयुग में सबसे सहज तरीका भगवान की उपासना का है, भगवान का नाम से, इसे और कोई सहज तरीका। आप असिद्ध हैं, आप चाहे जिस कुल में जन्मे हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, भगवान के नाम में सबका अधिकार है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों का भी अधिकार सुनने में है, वो सुन सकते हैं। इसमें मैं अपवित्र हूँ, एक आदमी मरने बैठा है, क्षति हो रही है, इसमें भगवान का नाम करते। पुराणों में उल्लेख है हनुमान जी का, एक समय एक शेरी तेल फेरता था, कल ही चलाता था, बैल के आँख को बंद करके और उसे घुमाता और हाथ हाथ चल चल करता है, दिन भर रात मैंने कभी भगवान का नाम नहीं लेता। एक दिन नारद जी ने कहा कि भगवान का नाम नहीं करता है तुम्हारा कैसे उद्धार हो, मुझे समय नहीं मिलता। प्रकृति तत्व में क्या करता है, इतने कर सकते कहाँ कर सकते हैं। नारद जी चले गए, वो शाम को शक्ति जब करने गया रात में, तो वहीं पर बैठ करके और राम राम कर, जहाँ पर ये नाम होता है वहाँ पर हनुमान जी जो भी आते हैं वो वहाँ पर उपस्थित हैं। देखा जैसे ये तो अपवित्र होकर के नाम कर रहा है, ऐसे एक बड़ी जोर से लात मारा, जिस लात को पा करके रावण गिर गया, मुंह की खाई, कुंभकर्ण गिर गया, बेहोश हो गया, उनके लाभ को सहने वाला अपनी शरीर साधन दुबला पतला और उसको कुछ नहीं हुआ, हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य कर दिया, चली भी उस करके चला गया। शाम को ही रामचंद्र जी राजभवन में पहुंचे राम के पास में, देखा जो राम पलंग पर बैठे हुए ऊँह पाँह कर रहे। हनुमान जी वहाँ पर पूछा, प्रभु आपके लिए क्या हो गया? तो तुम्हें मारा और तुम्हें पूछ रहे हो, हमने कब मारा? आप जो शेली को मारा वो हमको लगा क्यों? उस समय वो राम राम कर रहा था, मेरा नाम, मेरा नाम और मैं एक हूँ, अलग नहीं, इस चीज को विश्वास रखते। इसलिए जिसने वो नाम कर रहा था मैं यहाँ पर था, उसके हृदय में था, उसके शरीर में था, इसलिए वो चोट हमको लगी उसको नहीं लगी, ओ इसीलिए तो वो गिरा रही है। इसलिए चलते फिरते उसे बैठते फिरते पवित्र अपवित्र किसी भी अवस्था में, दिन में रात में, स्त्री पुरुष महिला कोई भी जाति का व्यक्ति हो, भगवान के नाम के समय में ये जाति इत्यादि का विचार नहीं है। ये शरीर तो मरती है, ये कौन सी जाति, और आत्मा भगवान का अंश है, ये कौन सी जाति, ये हमारे कल्पना करके हमने के स्थान के लिए उन्नति के लिए ये सब वर्ण व्यवस्था थी, जो किसी प्रकार से सभी लोग हर नाम करें। पीछे से वर्ण व्यवस्था में कुछ दोष आया और थोड़ा सा देकर के अभी सभी लोग इसके दिल भी लगे, उसको संस्कार करके इसमें जो दोष है दूर करके हम वर्णाश्रम को अपने भजन का अनुकूल बना सके। वर्णाश्रम का मूल था भगवान का भजन, संघ भी हो हमारे भारतवर्ष में, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, लड़ने वाले क्षत्रिय, जो साहित्य इत्यादि करने वाले ब्राह्मण, कर्म के धनी बुद्धिजीवी लोग उसके ब्राह्मण, और नौकरी चाकरी करने वाले ये सब वैश्य हैं, वाणिज्य करने वाले व्यवसाय धनी हैं, ये धनी हैं वैश्य, और दूसरों के यहाँ नौकरी करने वाले, ये सब नौकरी करने वाले सभी शूद्र हैं। इस वक्त ये धर्म दर्शा यहाँ पर नाम था, वैज्ञानिक पद्धति से ये सब बना हुआ था, लोगों के कल लोग इसको समझ नहीं सकते, विशेष करके आज भी। इसलिए पहले देखिए, ब्राह्मण भी एक शूद्र के लड़के को अपना भाई मानता था, प्रेम के साथ में उसे दूर नहीं रखता। हमने देखा हम लोगों के सामने भी, हम लोग जो समाज के साथ उनको चाचा जी कहते, और अपने गोदी में लेकर के हमका हम लोगों का पालन पोषण करता था, फल चलाता था। आज वो सब का प्रेम कहाँ चला गया, और जितने भी हिंदू नीचे वाले अब बौद्ध बन रहे हैं, कोई किस तरफ का किसी नहीं, क्योंकि इसके मन में था कल्याण की भावना। अब धीरे 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 हम लोग छोड़ करके कुछ भी नहीं, ये हिंदू लोग गो मांस नहीं खाते, मुसलमान लोग सुअर का मांस नहीं खाते, अब तो ये भी नहीं रहा, गो मांस और सुअर का मांस ये सब कुछ अब बाकी नहीं रहा। इस तरह से हम लोग धन से विपक्ष में जा रहे हैं, और दिन पर दिन देख रहे हैं, शिक्षित तो हो रहे हैं क्योंकि मार काट लूट पाट ये सब चल रहा है। इसलिए यदि हम कल्याण चाहते हैं, सुख और शांति जीवन में चाहते हैं, तो सहज रूप में भगवान का नाम का आश्रय। कलयुग में सबसे बड़ा श्रेष्ठ नाम है जिसको महामंत्र कहते हैं, वो हरे कृष्ण नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। इसको महामंत्र समझिए, जब गुरु से विधिवत दीक्षा नहीं है तभी ये काम करेगा। भगवान इसकी व्यवस्था करके सदगुरु मिला करके अंत में शुद्ध आचरण करके भगवान के भजन में लगा देंगे। उल्टा नाम जपतर जगाना जान, उल्टा नाम करते हुए वाल्मीकि जी कैसे बन गए, ब्रह्म के समान बन गए। अभी मीराबाई को देखो तो उनका नाम लेते लेते कैसे गए, तुलसीदास को देखो ये महामूर्ख और कैसे जगत के पूज्य बन गए। इसलिए नाम जगत का आधार है, कलयुग में नाम की अपेक्षा और कोई का है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने, नित्यानंद प्रभु जी ने समस्त जगत में ये नाम की महिमा बढ़ाई, और सर्वत्र सब लोगों से मांगते थे भिक्षा। आप लोग एक बार खुश में कहेंगे यही हमको भिक्षा दी, चावल दाल तरकारी रुपया पैसा नहीं मांगते थे, उनको रुपये पैसे की जरूरत नहीं थी, यदि होती तो वो लोग बहुत से रुपये मांग करके खुद धनी हो जाते, धन भिक्षा दी। इसलिए हम लोगों को भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, महामंत्र कैसे करते हैं आप जरा चिंतन कीजिए तो।